Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Kalyananam Nidhanam कलिमलमथनम पावनम पावनानाम पाथेयम् यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसाम् जीवनम् सज्जनानाम् बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतु भूतये राम नाम मधुर मधुर मे तन्मंगलम मंगलानाम निगम सकल निगम बल्ली चित्फलम सत्स्वरूपम सकृदपि परगीतं हेलया श्रद्धया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत् कृष्णनाम तारयेत् कृष्णनाम। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप कैवल्योपनिषद आप श्रवण कर रहे हैं, तो विधि तरीका बताया। जब आश्वलायन जी ने पूछा तो बोले परात्पर परम पुरुष अपने आत्मा के रूप में पहचानने की विधि तरीका पितामह जी ने बताया। श्रद्धा हो बुद्धि में, हृदय में प्रेम हो और ध्यान योग से अवेही माने जानो। अब मंत्र अगले बोलते हैं कि भाई श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग से ही जानने की बात क्यों कही। बड़ी प्रशंसा की गई कर्म की, कर्म की तो बहुत प्रशंसा है और यहां कहते न कर्मणा न प्रजयाधने न त्यागे नेके अमृतत्वमानशु परेण नाकम निहतम गुहायाम विभ्राजते यतयो विशन्ति। ये मंत्र है। तो कर्म की बड़ी भारी स्तुति की गई, बड़ी प्रशंसा है कर्म की और आप कहते न कर्मणा। देखो कुर्वन्नेवे कर्माणी जिजी विशेषतम समाह, ये कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मणैव हि संसिद्धि मासिता जनका दया यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम। देखो स्पष्ट लिखा है, इतनी कर्म की प्रशंसा की गई और आप कहते हो ये भी कहा कर्म जायो हे कर्मणा। कर्म की इतनी प्रशंसा है श्रुति में, स्मृति में, वचन में, कर्म लिखा नहीं बावर होई। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करे सुतस फल चाखा, ये सब लिखा। तो आपने कैसे कह दिया न कर्मणा। तो अभी आप सुन भी रहे थे कि कर्म हमेशा अज्ञान से होता है, कर्तृत्व पूर्वक होता है, भोक्तृत्व पूर्वक होता है। तो अपने को कर्ता मानना, भोक्ता मानना, यही तो अज्ञान है। और कर्म से सबसे बड़ी बात है कि उसमें विधि चाहिए और विधि में सबसे पहले संकल्प है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, ऐसा इनको हमें ये फल मिले, ये संकल्प पहले हो जाता। काम में कर्म होता है तो इसलिए संकल्प पूर्वक या विधि पूर्वक कर्म होता है। एक बात तो ये, दूसरी बात कर्म में दोष क्या है। जैसे मान लीजिए यज्ञ है, यज्ञ में कई बार लकड़ियां होती, लकड़ियों में चीटियां होती हैं, तो हिंसा भी हुई। कई बार जब अपनी सामर्थ्य नहीं होती है तो चंदा करना पड़ता है, उसमें बड़ी निंदा होती है। चंदा और निंदा, ये दो चीजें तो वर्जित ही है। तो कर्म में, करने में दोष और कर्म के फल में दोष, और फिर कर्म से प्राप्त होगा जो स्वर्ग, तो वो स्वर्ग कितने दिन के लिए टिकेगा? जितने दिन आपके पुण्य हैं, ये नियम है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, जहां पुण्य क्षीण हुए तो बस। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया कि देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए, सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की कि भगवान आपको तो परीक्षित को अमर बनाना है, तो ये अमृत हम ले आए, अमृत बना लो, इससे अमर बना लो, अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी हंसने लगे, कहा ये क्या कह रहे हो, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। अरे तुम उसकी बराबरी कर रहे हो क्यों? बोले अमृत ठीक है, पहली बात तो एक स्वर्ग मिले, माने मरे, मरने की पहले विधि है, तो पहले मरे तब जाए स्वर्ग, यहां नहीं मिल सकता, जिंदा रहते रहते पहले मरे और फिर जाए स्वर्ग। और स्वर्ग में कितने दिन तक टिकेगा? जितने दिन वो पुण्य होंगे, इसलिए कहां कांच की तरह ये अमृत और मणि की तरह कथा, इसका कैसे विनियोग हो भाई, तो मना कर दिया। तो कर्म की प्रशंसा जरूर है, लेकिन जरा विचार करके देखो, श्रुति में जहां लिखा कुर्वन नेवेह कर्माणि, कुर्वन ये शत्रि प्रत्यय है और ये परस्मै पद बोला जाता, ईश्वर अर्पण करे कर्म या विश्व के अर्पण करे, विश्व नाम भी भगवान का ही है, समाज का विराट के नाम से कर्म करे। और कुर्वन नेवेह कर्माणि, इह यह संसार में, और कर्माणि बहुवचन आया, मन नित्य नैमित्तिक काम कर्म सब कर्म करो, जीजी विशेष सन्नंत प्रयोग है। इसका मतलब ये हुआ कि मरने की, हत्या करने की, आत्महत्या करने की इच्छा न करो, जीने की इच्छा करो। तो यहां जो ये कहा गया, ये एक दूसरे ढंग से कहा गया, जैसे अनधीत द्विजो वेदान अनुत्पाद्य च स्व आत्मजान, अपने पुत्र को पैदा न करके और अनधीत द्विजो वेदान वेद का अध्ययन न करके और अनिष्ट्वा यज्ञश्चैव, और यज्ञ इत्यादि को न करके मोक्ष मिच्छन पतत्यधा, जो कोई मोक्ष की इच्छा करता है वो नीचे गिरता, शास्त्र का ये भी वचन है। अनधीत द्विजो वेदान, वेद का अध्ययन करना चाहिए, निष्प्रयोजनम खडंगो वेदो गेया ध्येयश्च, निष्प्रयोजन ही पढ़ो, उनका अध्ययन करो, वेद कहां कर्म कहा गया। लेकिन जरा इस विचार करो कि ये जहां जहां कर्म का वर्णन आया, वो आलसी लोगों को किसी विशेष कर्म में लगाने के लिए आया। जो निठल्ले बैठे हैं, आलसी बैठे हैं, उनके लिए आया, कर्म जाओ ह्य कर्मणा, ये तो नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, ये आप कल ही सुन चुके। बलहीन लोग, लोगों के लिए आत्मज्ञान नहीं है, इसमें तो बड़े पुरुषार्थ की जरूरत है, पहले साधन चतुष्टय संपन्न हो, फिर गुरु जी की सेवा करे, परिप्रश्ने न सेवाया आया, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया, इंद्रियां संयत हों, और कर्म जितना होता है इंद्रियों से होता है, यहां कहते हैं संयत इंद्रियां हों, तो इसलिए कर्म से वह वस्तु नहीं प्राप्त की जा सकती जिससे अमृतत्व उपलब्ध हो सके। माने अपने को कर्म जब करोगे तो कर्म का फल भी मिलेगा, भोजन करोगे तो तृप्ति होगी, गेहूं बोगे तो गेहूं मिलेगा, जो भोगे सो मिलेगा। तो कर्म का फल भोग के कारण यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा। कितना स्पष्ट कहा। तो कर्म का फल और कर्म का कर्तृत्व ये अज्ञान दशा में है। तो कर्म का फल मिला, फिर कर्म मिला, फिर फल मिला, फिर कर्म मिला, तो स्थिति श्रृंखला चलती रहेगी। जीते जी कर्म के द्वारा अपने को अमृत तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती, तो इसलिए तब फिर क्या करें। बोले कहा कि अनुत्पाद्य च स्वात्मजान, अपने बेटों को पैदा करने करके वो श्राद्ध वगैरह करेंगे, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके कोई संतान नहीं उसकी तो गति नहीं होती है, तो फिर कैसे भाई। तो वो परात्पर परस्पर परम पुरुष अपनी आत्मा के रूप में पहचानने के लिए क्या चाहिए। बोले जब कर्म नहीं चाहिए तो प्रजा तो चाहिए, संतान उत्पन्न होगी तब न श्रद्धा से श्राद्ध किया जाएगा। अर्जुन कहता है लुप्त पिंडोदक क्रिया जायते वर्ण संकरा। तो बोले ठीक बात है, आप एक बात ध्यान दें, आत्मा वही जायते पुत्र है, ये क्यों कहा गया, पुम नरकात त्रायते इति पुत्र। ओ पत्नी के गर्भ से पिता ही पुत्र रूप में आ जाता है। एक प्रश्न उठाया गया कि दूसरी संतान पैदा करनी चाहिए कि नहीं, क्यों, इसलिए नहीं करनी चाहिए कि पिता स्वयं आ गया है पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में, तो अब पिता तो पुत्र बन गया, जो पति था वो पुत्र रूप में बन गया, पहले वो पत्नी थी अब बन गई मां। अब आप ही सोचो, और सरकार इतना निरोध में खर्चा कर रही है, और यहां ये बता रहे हैं कि जो पत्नी थी वो अब मां बन गई, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र स्पष्ट लिखा है। तो इसलिए भाई जब ये आप सिद्धांत करेंगे कि वो परात्पर पर पुरुष आत्मा के रूप में पहचान में आ जाए, ये संतान कैसे कर पाएगी। ये तो ठीक है संसारी लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन संसार में आने के लिए है ना। जैसे आप कई बार सुन चुके कि आपको अगर भगवान चाहिए तो सुविधा सामान सम्मान को अलग रखना पड़ेगा, और अगर संसार चाहिए तो फिर तो संसार में संसार से सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सुविधा भी मिलेगी। तो इसलिए संसार अगर चाहिए हो तब तो ये चीजें करो, और अगर संसार से पार होना चाहो, जेल से छूटना चाहो, ये जन्म मरण को पहले जेल समझो, फिर जेल से छुटकारा मिले, इसके लिए कहते संतति नहीं है। न कर्मणा न प्रजया धने न, यही तो मैत्री जी ने कहा जब उन्होंने कहा कि भाई तुम और कात्यानी दोनों पत्नी बांट लो जो कुछ हमारे पास सामान है। तो मैत्री ने पूछा कि जो तुम्हारे पास सामान है धन है उसको बांट लेने से क्या हम अमृतत्व तो मिल जाएगा। तेन किमहम अमृतम श्याम, तब उन्होंने कहा कि ना भाई सो तो नहीं हो पाएगा। क्यों, बोले वो अन्य चीज है, देखो आप लोग समझ रहे हो कि जो हमसे दूसरी चीज है, जो भिन्न है, जो हमारे से अलग है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना होता है कर्म से, प्रजा से, धन से। लेकिन जो अपने भीतर है, अपना आपा है, उसको उपलब्ध करने के लिए धन नहीं चाहिए। उससे धन से क्या? और आत्मा के लिए, अपने सुख के लिए ही सब कर्म किया जाता है। ना जायाई जाया प्रिया भवती, कहते हैं पत्नी अपने पति के प्रेम से के लिए नहीं प्रिय लगती है। ना वित्तम ना पुत्रः, देखो स्पष्ट लिखा, पुत्र जो होता है पुत्र के लिए सुख नहीं, अपने लिए, अपने सुख के लिए। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, सब कुछ अपनी आत्मा के लिए प्रिय होता है। तो भाई ना कर्मणा ना प्रजया धनेना, ये ना कर्म से ना प्रजा से, संतति से और ना धन से, ये वो उपलब्धि नहीं हो सकती। क्या बोले? अमरता अमृतत्वम, एके अमृतत्वम आंशुः, एके माने बिरले ही, बहुत कम मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत् सिद्धये। नर सहस्त्रमा सुनो पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, हजारों में कोई। एक बड़ा सुंदर आख्यान आया उपनिषद में कि सारी धरती का राज्य मिल जाए और जवान भी हो, सब तरह का सुख हो, स्त्री का सुख हो, धन का सुख हो, मकान का सुख हो, जितने भी सुख बताए गए, ओ सुख से 100 गुना सुख एक मनुष्य गंधर्व को होता है, और उससे 100 गुना सुख देव गंधर्व को होता है, उससे 100 गुना धर्म इंद्र बृहस्पति और ब्रह्मा और सबको 100-100 गुना करते चल जाओ, और उससे 100 गुना सुख आनंद एक ब्रह्मज्ञानी को उपलब्ध होता है। अब आप जरा सोचिए, 100 में गुणे करते जाइए, अंत में एक ब्रह्मज्ञानी को जो सुख, जो आनंद। क्यों? आनंद ये दूसरे के सहारे से मिलता है और वो आनंद अपना स्वरूप प्रकट होता है। तो जो अपना स्वरूप प्रकट होता है उसको कहते हैं उपलब्धि, और जो बाहर से मिलता है उसको कहते हैं प्राप्ति। तो जो बाहर से मिली हुई वस्तु है वो तो चली जाएगी, और उपलब्ध वस्तु वो होती है जो पहले ही से मिली मिलाई है। अनमिले का भ्रम दूर होता है, अप्राप्त की भ्रांति निवृत्ति मोक्ष है। अब देखिए, न कर्मणा न प्रजया धनेन, अब एके माने बहुत बिरले, हजारों में कोई एक ऐसा होता है जो कहते अमृतत्वम आनशुः, अमृतत्व की उपलब्धि करते हैं। इसका भाव ये हुआ कि बहुत कम माने रेयर केस ऐसे हैं, बिरले ही हैं, जो यही सारे आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनवाव न जाई। ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। ज्ञान की पंथ, कृपाण की धारा, तो इसलिए ये बहुत कठिन है। तो परेण नाकम निहितम गुहायाम, यहां नाकम शब्द है, उसे नाक माने स्वर्ग होता है, लेकिन इसमें 2 नए लगाए गए, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो पहले नाक, नाक में आ है, कम खम ब्रह्म का सुख को कहते हैं, और आ लगा दिया तो आकम माने दुख, और फिर ना लगाया फिर दोबारा तो दुख रहित, तो दुख रहित आनंद, दुख रहित सुख। भले वो दुख रहित सुख ना कम परेण, वो कहते हैं स्वर्ग से भी परे है। क्यों भाई? स्वर्ग में जाना होगा, खूब भोग मिलेंगे। बोले भोग तो मिलेंगे, लेकिन बड़ा कठिन मामला, मिलेंगे कब तक? नचिकेता ने यही तो कहा कि भाई आप हमको जितना भी गिना रहे हो प्रेम मात्र, ये उम्र ले लो, ये रुपया ले लो, ये ले लो, ये गाय ले लो, तो ये सब क्या है? मेरे पास रहेगा? कहाँ रहेगा, स्थाई रहेगा। उम्र बहुत सी, कह कितनी उम्र दे दोगे? जितनी तुम्हारी होगी उतनी तो दे पाओगे। तो तुम्हारी उम्र जब अस्थाई है, टेम्परेरी तुम हो, सो टेम्परेरी हम दे पाओगे। इसलिए हमें नहीं चाहिए, हमें वो विद्या चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, जिससे हम अपने को अमर सिद्ध कर लें। बड़ी सुंदर बात बताई, परेण नाकम निहितम गुहायाम। वो जो सुख है, वो सुख से परे वो कहां है? बोले वो तो निहितम गुहायाम। ये तो श्रुतियों में बहुत जगह आया है कि बुद्धि रूपी गुफा है, हृदय रूपी गुफा है, उसमें विराजमान है। ये बुद्धि पर बल केवल वेदांत में ही दिया गया है, और नहीं दिया गया। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति न्याय ने मानी, और दुखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के सांख ने मानी। दुख रहित जीवन, अरे दुख रहित जीवन तो सुषुप्ति में भी होता है, और जब बेहोश किया जाता है उस समय भी दुख रहित होता है, कोई वेदना नहीं होती। जब ऑपरेशन डॉक्टर करता है तो बिल्कुल शून्य कर देता, तो उस समय कहां दुख होता? बड़ी विलक्षण बात है। परेण नाकम निहतम गुहायाम, वो बुद्धि रूपी, ये हृदय रूपी गुफा में ही विराजमान है, विभ्राजते शोभायमान है, चम 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 चमक रहा है। अरे उसमें आया वेद में कि अरे पश्यंतु ए पृथिव्याः पुत्राः संतु, जो कोई पूरे धरती भर में बेटा है वो सब देख लें। क्या देखें? भूवर देवम अवितो भ्राजमानम, देवता चम 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 चमक रहा है। कहाँ है? बोले अतीत देवम तिष्ठन असंवृतम दहरेस्मिन हृदय संचकास्तु। ए खुले, खुली आंखों से आप देखिए। कहां? बोले हृदय दहर में, दहरेस्मिन, इसी हृदय दहर में वो बैठा है। तो अब एक बार म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी,